ज्ञानी परमार्थ तत्व को कैसे देखता है ये भगवान ने 18वें श्लोक में बताया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता जिसको आत्मज्ञान हो गया, कैसे आत्मज्ञान हुआ उसके पीछे वाले श्लोक में बताया गया है उसको कैसे आत्मज्ञान हुआ। उसमें बताया गया था कि वो तत्परायणा है, तत्परायणा मतलब आत्मा उसकी गोल है, उसका लक्ष्य आत्मा है। तन्निष्ठा, तन्निष्ठा मतलब श्रवण मनन उसने किया है, श्रवण मनन निष्ठा। उसके बाद में तद आत्मना, तद आत्मना मतलब उसने निधिध्यासन किया। उसके बाद तद्बुद्धय, तद्बुद्धय मतलब साक्षात अपरोक्ष अनुभूति उसको हो गई, ऐसे उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो परमार्थ दर्शन सब में कैसे करता है तो बताते हैं विद्या विनय संपन्न। अब उसके पास विद्या भी है, आत्मविद्या मिल गई, विद्या मिलने से उसको विनय भी मिल गया, ह्यूमिलिटी है, दोनों साथ होनी चाहिए। विद्या के साथ अगर गर्व आ जाए तब वो विद्या नहीं रहेगी, विद्या के साथ विनय आना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एक अभिहस्तिनी। अब वो देखो कैसे देखता है ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या हुआ सत्वगुणी हुआ। और एक ह्यूमन बींग, और एक मनुष्य की बात की है, स्वपाके चंडाल तमोगुणी हुआ। तो एक जो है सत्वगुण है और एक तमोगुण है। और फिर तीन किस्म के जानवरों की बात की गई, गवी हस्तिनी और सुनी। गनी गवी मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी और सुनी मतलब, सुनी क्या होता है डॉग। चलो तो ये तीन जो हैं तीन किस्म के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक हैं। तो सात्विक राजसिक तामसिक पशुओं में और मनुष्यों में सत्व हो या तामसिक चंडाल हो सब में क्या देखता है समदर्शिना, सबके अंदर वो एक आत्मा को देखता है। हालांकि उपाधि अलग अलग है, उपाधि सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है, वो मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, मगर सबके अंदर वो आत्म तत्व एक है, सब में वो एक देखता है। यह याद रखना होगा यहां वर्ड भगवान ने समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा है। समवर्ती, समवर्ती का मतलब सबके साथ व्यवहार एक, ऐसा नहीं कहा। दर्शन एक कहा है, वर्तन अलग अलग होगा, अपने अपने पोजीशन के हिसाब के सबका वर्तन होगा। फिर वो व्यक्ति कैसा है तो कहते हैं कि इह एव, यहां पर ही, इह एव यहीं पर, दूसरी जगह नहीं। तई, तई मतलब वो पंडित समदर्शी। जित सर्ग मतलब अपने जन्म को उसने जीत लिया, उसने अपने जन्म को जीत लिया, जन्म को अपना सार्थक बना लिया। ये साम चाम्य स्थितिम बना, उसकी मन की स्थिति कैसी है? साम्य है, एक बराबर हो रहता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी तेजसा। बोले ब्रह्म कैसा है? बोले वो तो निर्दोष है। निर्दोष है मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में कामना नहीं है इसलिए निर्दोष है। ब्रह्म में राग द्वेष नहीं है इसलिए ब्रह्म सम है। निर्दोष और सम का मतलब हुआ ब्रह्मन के अंदर में राग द्वेष नहीं है, लाइक डिसलाइक नहीं है, वासना नहीं है, इसलिए ब्रह्मन सम है। ब्रह्मन के अंदर कोई कामना नहीं है इसलिए वो निर्दोष है। जब कभी आपसे कोई पूछे तो आपको बताना होगा सम कैसे हुआ, निर्दोष कैसे हुआ, ये सब जगह आपको मिलेगा नहीं। सम है तस्मात ब्रह्मणी तेजसा, इसलिए वो क्या है? ब्रह्मणी, ब्रह्म के अंदर बराबर वो स्थित है। अब ब्रह्म में जो अगर स्थित हो गया फिर क्या होता है? क्योंकि ब्रह्म जो है निर्दोष और सम आत्मा है और वो क्या बन गया? वो भी आत्मा है, वो भी ब्रह्म हो गया क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? न प्रहृष्येति प्रियं प्राप्य। कोई प्रिय वस्तु के मिल जाने से वो हर्षित नहीं होता। अच्छा, हर्षित का ऐसा मतलब नहीं कर देना कि भाई मैं साउथ इंडियन हूं और मेरे को भोजन के अंदर में अगर डोसा मिल गया तो मुझे हर्ष नहीं होता, ऐसा नहीं है। सुख होता है मगर उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लोग जो है इतना हर्षित हो जाते हैं कि बस जो उछलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। और वो ये भी नहीं चाहता है कि ये हर्ष की स्थिति बनी रहे। ज्ञानी को छोड़कर हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हमारी ये परिस्थिति जो हमको सुख दे रही है वो बनी रहे। नवद्वेजित प्राप्य च अप्रियम। अप्रियम जो उसको पसंद नहीं है वो मिल गया तो उसे उद्वेग नहीं होता, उसको दुख भी नहीं होता है। तो हर्ष और दुख दोनों नहीं होता है। ये कहां से प्राप्त हो रहा है? प्राप्य वस्तु, ये सारी अनात्म वस्तु के साथ हो रहा है। अनात्म वस्तु, उसकी प्रिय अनात्म वस्तु मिल जाए तो उसको हर्ष नहीं है। ऐसी वस्तु अनात्म मिल जाए जो उसको पसंद नहीं है तो उसमें उसको उद्वेग नहीं है। स्थिर बुद्धि असमूढ़ है। स्थिर बुद्धि है उसकी। कहां पर स्थिरता है उसकी बुद्धि? बुद्धि उसकी आत्मा में स्थिर है। स्थिर बुद्धि असमूढ़ मूढ़ है जो मोहित है, सम्मूढ़ है अच्छी तरह से मोहित है, असम्मूढ़ है जो मोहित नहीं है। ब्रह्मविद, अब वो कैसा है? ब्रह्मविद, कैसे ब्रह्मविद बना आगे हम लोगों ने देख लिया। ब्रह्मविद बन गया, वो ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्मणी स्थित है, वो ब्रह्मन के अंदर में स्थित है। इतना तक हम लोगों ने पीछे देखा था, अब हम 21वां श्लोक देखेंगे।
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्
सब्रह्मयोगयुक्तात्मा
सुखम् अक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते।
बाह्यस्पर्श, स्पर्श किसको कहते हैं? जिसका इंद्रियों द्वारा स्पर्श करने से ज्ञान होता है उसे स्पर्श कहते हैं। तो इंद्रियां किसको स्पर्श करती हैं? इंद्रियां स्पर्श करती हैं इंद्रिय विषयों को। विषय कितने हैं? पांच हैं, सप्त, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पांच इंद्रियां जब इनको स्पर्श करती हैं तो क्या होता है? बोले ये इंद्रियां तो बाहर हैं और वस्तुएं कहाँ हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर हैं, बहिर्मुखी हैं, और ये स्पर्श कहाँ हैं? विषय भी बाहर हैं। अच्छा, तो ये बाहर जो विषय हैं इसको हम जो है तीन चीजों में भाग कर सकते हैं, कामनी, कांचन, कीर्ति। सब पांच विषयों को कामनी, कांचन, कीर्ति के अंदर ही कह सकते हैं। अच्छा, जो बाह्य वस्तु में आसक्त है, यानी कि जो शब्द से गंध तक के विषयों की कामना करता है, आसक्त मतलब अटैच्ड है, जो उसकी कामना करता है ताकि विषय सुख पा सके, और फिर वो दिन रात उसमें लगा रहता है। जो विषयों के साथ आसक्त है उसकी ऐसी धारणा है कि विषय सुख देते हैं, इसलिए वो दिन रात विषयों को इकट्ठा करने में लगा रहता है ताकि वो सुखी हो सके। मगर इससे भिन्न भी एक और आदमी है। ये तो जो व्यक्ति विषयों के साथ में आसक्त है उसकी बात है, मगर यहां पर कहा बाह्य स्पर्शेशु असक्तात्मा। असक्तात्मा कौन है? जो विषयों में अनासक्त है। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसमें वो अनासक्त है, उसमें वो अनासक्त है। आप बराबर याद रखना, हमको बराबर शास्त्र यही कहते हैं, उसके साथ में आसक्त नहीं होना है, अनासक्त होना है। अनासक्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको भोगोगे नहीं। जब तक पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच विषय हैं, उसका भोग होगा। अगर आप आसक्त हो जाते हो तब आप जो है वासना फॉर्म करते हो, आपको वो चीज बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। भोग करो मगर अनासक्त हिसाब से, उसके साथ में आसक्त नहीं होना है। तो वाह्य स्पर्श असक्तात्मा, असक्तात्मा मतलब क्या हुआ? वैरागी, वैरागी, उसको वैराग्य है। किससे वैराग्य है? वाह्य विषयों से वैराग्य है, वाह्य विषयों से वैराग्य है। और इसको सीधा कर देते हैं, वाह्य विषयों से वैराग्य मतलब अनात्मा से उसको वैराग्य है। अच्छा, बिंदति आत्मनि यत् सुखम, तो उसको सुख कहां से मिल रहा है? आत्मा से। बिंदति आत्मनि यत् सुखम, उसकी प्रीति विषयों के साथ नहीं है, एक अनात्मा है, दूसरी आत्मा है। हम सब जो है सुख खोज रहे हैं कहां पर? अनात्मा में। और ये अनासक्त व्यक्ति उसको छोड़ दिया है और आत्मा को पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये आत्मा है कहां? आत्मा भीतर है। विषय कहां है? तो अनासक्त व्यक्ति बाहर के विषयों को छोड़ दिया है, उससे आसक्त नहीं है, और उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। कहां से सुख की प्राप्ति हो रही है? भीतर से हो रही है। भीतर से हो रही है मतलब आत्मा से हो रही है। देखो, समझ में आया ना डिफरेंस, अलग अलग। अच्छा, तो ये वैराग्य का सुख है। सबसे बड़ा सुख वैराग्य सुख कहलाता है। देखो, हमारा शास्त्र कहता है सबसे बड़ा सुख जो है वैराग्य का सुख है, वैराग्य का सुख है। देखो, सुख भी तीन किस्म के होते हैं। एक सात्विक सुख होता है, आपने पूजा की, आप मंदिर गए, आपने जप किया, ध्यान किया, वो है सात्विक सुख। एक राजसिक सुख होता है, आपने स्पाइसी फूड खाया, चटकदार, वो क्या हुआ? राजसिक सुख। कुत्ते को पत्थर मार के उसकी चीख सुन के जो सुख पाता है वो है तामसिक सुख। दूसरों को दुख देखकर जो खुशी होता है वो तामसिक सुख है। और वैराग्य सुख ये सुपर सात्विक है। वैराग्य का सुख जो है वो जप और मंदिर भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के ऊपर नहीं निर्भर करता। वैराग्य का सुख जो है क्योंकि वो आत्मा के अंदर स्थित है इसलिए उसको सुख मिल रहा है। अगर वैराग्य का सुख इतना ज्यादा है तो सोचो जीवन मुक्त का सुख कितना होगा। जीवन मुक्त का सुख और ज्यादा है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। स मतलब वो ज्ञानी, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म में जो समाधि है, जो ब्रह्म योग है, जिसका अंतःकरण ब्रह्म के अंदर लगा हुआ है, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहलाता है। वो कहाँ है? बराबर आत्मा में लगा हुआ है। अनात्मा से वैराग्य दो चीजें हैं, हम सब अनात्मा में जुड़े हुए हैं। और जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो क्या है? इसको छोड़ दिया, वो आत्मा में। उसको कौन सा सुख मिल रहा है? उसको परमानेंट सुख मिल रहा है। अनात्मा का सुख कैसा है? टेम्पोररी है, उसके अंदर डिग्रीज हैं। देखो अनात्मा के सुख प्रिय मोद एंड प्रमोद होते हैं ना, उसमें डिग्रीज हैं। आत्मा के सुख के अंदर डिग्रीज नहीं होते, होमोजूनियस है, होमोजूनियस है। अच्छा, अच्छे सुख पाने के लिए ब्रह्म में समाधि लगानी होती है, उसके पहले विषयों से वैराग्य चाहिए। वो जो सुख पाता है वो अक्षय सुख है। हमको जो सुख मिलता है विषयों से वो कैसा है? क्षय वाला है, अभी है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं है। समझ आ रहा है ना? अनात्मा का सुख जो भी है वो क्षय है, उसमें डिग्रीज हैं, उसमें प्रिय मोद प्रमोद है। और आत्मा का सुख अक्षय है, वो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, अगर आपकी समाधि नहीं लगी है तो ये जानो कि वैराग्य पूरा नहीं है। अगर आप समाधि में बैठते हो और समाधि नहीं लग रही है तो ये जानो कि आपका वैराग्य पूरा नहीं है। क्योंकि अगर मन आपका आत्मा में नहीं लग रहा है तो मन अनात्मा में जा रहा है। वह बैठता है कि नहीं बैठता है? हम समाधि में बैठे हैं, मन समाधि में लग नहीं रहा है, मन आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है, किधर जाएगा फिर? अनात्मा में जाएगा ना। दो ही तो चीज है, आत्मा ना, तीसरी होती तो फिर कंफ्यूजन होता। दो ही चीज है, अनात्मा में जा रहा है। अनात्मा में जा रहा है इसका मतलब आपका वैराग्य अनात्म वस्तु से पूरा नहीं हुआ। समाधि नहीं लगी इसका मतलब वैराग्य आपका पूरा नहीं। समाधि जो है वैराग्य की परीक्षा है, आत्मज्ञान की परीक्षा नहीं है। देखो समझो, ठीक से समझना। समाधि जो है वो वैराग्य की परीक्षा है, समाधि जो है आत्मज्ञान की परीक्षा नहीं है। आत्मज्ञान श्रवण काल में हो जाता है, आत्मा का ज्ञान श्रवण काल में हो जाता है। मेरे को आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए समाधि में बैठेंगे, समाधि नहीं लगी इसलिए ये मत कहना कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं लगी समाधि? क्योंकि वैराग्य पूरा नहीं है। वैराग्य पूरा होगा तब समाधि लगेगी। हाँ, हो सकता है ज्ञान होने के बाद भी। आत्मा का ज्ञान आप सबको है, एक अनात्मा है एक आत्मा है। हम लोग दूसरे चैप्टर में आत्मा का ज्ञान तो बहुत पहले पा चुके हैं। 11 से लेकर 38वें श्लोक दूसरे अध्याय के अंदर पूरा आत्मज्ञान था, सबने हमने लिया उसको। आत्मज्ञान हुआ है मगर उसके अंदर जो समाधि करके उसकी अनुभूति करनी होती है, जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, वो नहीं हुई है। अपरोक्ष अनुभूति कैसे होगी? समाधि में बैठना होगा, निधि ध्यासन करना होगा। आप समाधि में बैठ रहे हैं मगर आपका जो है मन बैठता नहीं है। मन बैठता नहीं है मतलब मन कहाँ जा रहा है? आप घर के बारे में सोच रहे हो, या अपने संतान के बारे में सोच रहे हो, नौकरी के बारे में सोच रहे हो, तो ये सब क्या है? ये आत्म वस्तु है या अनात्म वस्तु है? बाह्य वस्तु है, आप वायु वस्तु की चिंता कर रहे हो। वायु वस्तु की चिंता मतलब आपने वहां से अभी हटे नहीं, वहां अभी वैराग्य जन्मा नहीं, वैराग्य पूरा नहीं हुआ वहां पर, इसलिए मन आपका उधर जा रहा है। साधक जो है वैराग्य का सुख मन के स्तर पर पाता है, जो साधक है वो वैराग्य का सुख मन पर पाता है, उसको शांति मिलती है। जैसे ही आपका अगर मन शांत होने लगे ना, आप समझो कि आप रास्ते पर चल रहे हो। ठीक, साधक जो है वो अभी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं है, वो साधना कर रहा है, मगर उसको अनुभूति कुछ होती है। क्या अनुभूति होती है? कि भाई मन शांत हो रहा है, आगे मन बहुत अशांत था, अब मन शांत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक मन के स्तर पर शांति का अनुभव करता है, मगर ज्ञान के पश्चात पूर्ण वैराग्य हो जाता है। पूर्ण वैराग्य मतलब अब वो फियरलेस हो गया, अब उसको किसी किस्म का भय नहीं है। हमें तो कुछ हरदम भय लगा रहता है, भय नहीं लगा रहता है कहीं नौकरी नहीं चली जाए, कहीं हमारा बैंक ना फेल हो जाए, कहीं हमारी छत लीक ना करने लगे, भय सब समय भय लगा रहता है। हमको जहां जाना है काम पर वहां पहुंच सके कि नहीं, हम बलवान हैं, कोई हमारा जो है कोई शत्रु हमसे ज्यादा बलवान ना मिल जाए, भय लगा रहता है, हरदम भय लगा रहता है। मगर जिसको ज्ञान हो गया, जो स्थित हो गया, वो अभय हो जाता है, उसको और भय नहीं है। साधक जो है संसार नहीं चाहता। क्यों नहीं संसार चाहता है? क्योंकि संसार सब समय भय देता है, संसार सब समय हमें भय देता है। साधक जो है संसार को नहीं चाहता। और ज्ञानी की स्थिति क्या है? ज्ञानी कहता है जगत ही नहीं, भय कहां? ज्ञानी कहता है जगत ही नहीं है, संसार ही नहीं है, तो कौन भय मेरे को देगा? ज्ञानी का मतलब वो अभय आत्मा में स्थित है, अभय आत्मा में स्थित है। तो ज्ञानी अक्षय सुख पाता है, वो आत्मरति करता है, आत्म क्रीड़ा करता है, आत्मसंतुष्ट है। अब प्रश्न आता है हम कैसे विषय की प्रीति से हटें, है ना? ये भी तो बताना होगा। आपने तो कह दिया अनासक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, कैसे अनासक्त हो ये भी बताओ। तो भगवान जो है अगले श्लोक में बताते हैं, 22वां श्लोक।
ये हि संस्पर्शजा भोगाः,
संस्पर्शजा भोगाः,
दुःखयो नैव ते,
दुःखयो नैव ते,
आद्यन्तवन्त कौन्तेय,
आद्यन्तवन्त कौन्तेय,
नाते शूरमते बुधः,
नाते शूरमते बुधः,
ये हि संस्पर्शजा भोगाः, दुःखयोनयैव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, नाते शूरमते बुधः।
ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनयो एवते। संस्पर्श जा मतलब जो जन्म लेता है, संस्पर्श से विषयों के स्पर्श से जो सुख आता है, भगवान कहते हैं दुख योन एवते। ये दुख की योनि है, ये प्राकृतिक सुख नहीं है, ये नेचुरल सुख नहीं है, ये तो दुख की योनि है। तो महात्मा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को संस्पर्श करने से क्या मिलता है, सुख मिलता है क्या? दुख मिलता है। बोले ठीक, इसी तरह से हमको लगता है सुख मिल रहा है, मगर बोलते हैं कि वो अल्टीमेटली जो है दुख की योनि है। कैसे दुख की योनि है बताएंगे आपको हम, वो दुख की योनि है, दुख देता है ये। अच्छा, संसारी सुख कैसा है? बुद्ध अविद्याजन्य है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, सोर्स नहीं मालूम है। सुख का सोर्स केवल एक है, वो क्या है? आत्मा का सुख। हम सुपर इंपोज करते हैं कि ये सुख हमको रसगुल्ले से मिला, ये सुख हमको घर से मिला, ये सुख हमको शेयर मार्केट से मिला, मगर सोर्स एक है, वहीं से आता है। हमको सोर्स को पकड़ना है, सोर्स तक जाना है। तो संसारी सुख क्या है? अविद्याजनक है, केवल दुख का कारण है। अच्छा, तीन किस्म के दुख कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन किस्म के दुख हैं। अच्छा, भगवान ने आगे दूसरे अध्याय में कहा था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा, इंद्रियां जब विषयों को संस्पर्श करती हैं तो उसमें ये चीजें आएंगी, सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, शीत उष्ण आएगा, ये द्वंद आएंगे। अच्छा, इन विषयों का नेचर क्या है, इनका स्वभाव क्या है विषय का, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो विवेक चूड़ामणि के अंदर में शंकराचार्य जी ने कहा है, दोषे न तीव्रो विषय है कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्यम। देखो, इनका जो है शंकराचार्य जी कंपेयर करते हैं कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प मतलब कोबरा, कृष्ण मतलब काला, सर्प कोबरा, कोबरा के अंदर क्या है? विष है। बोलते हैं कि ये जो है कोबरा के विष से भी विषय के अंदर जो विष जो है, देखो विषय वर्ड के अंदर विष है ना, हिंदी में विषय जब लिखते हैं तो उसमें विष वर्ड आता है ना, विष बीच में आ गया ना, बोला इसके अंदर जो विष है वो कृष्ण सर्प के विष से तीव्र है। कैसे भाई तीव्र है, आप कैसे कहते हो तीव्र है? बोले विष को अगर आप देखो तो आप मरते नहीं हो, विष को पान करोगे तब मृत्यु होगी ना, देखने से किसकी मृत्यु हुई है, मगर विषय बोलते देखने से मृत्यु हो जाती है, देखने से मृत्यु हो जाती है, मतलब इसीलिए तो मॉल में सब कुछ खुला पड़ा रहता है कि आप देख लो एक बार, फिर देखो आपकी मृत्यु होती है कि नहीं। आप घर में जाके चिंतन करते रहोगे और दूसरे दिन फिर मेसी पहुंच जाओगे, ये इस साल का नया फैशन है, है? अच्छा, दूसरा विषय का नेचर क्या है? तो सर्वेत इंद्रियाणि जरयन्ति तेजः, ये नचिकेता ने कहा था, यमराज ने उसको कहा, नचिकेता गया था कि मेरे को आत्मज्ञान दो, आत्मज्ञान दो, तो यमराज ने उसकी परीक्षा ली कि देखे तुम्हारा वैराग्य पूरा है कि नहीं, वैराग्य पूरा होगा तभी तो आत्मज्ञान होगा। हम लोग को हुआ क्या आत्मज्ञान? तो वो 8 साल का लड़का कहता है कि तुम जो कुछ हमको देना चाहते हो कि आजीवन जितनी देर तक तुम चाहो तुम पृथ्वी पर रह सकते हो, जब तक मैं यमराज हूं तब तक मैं तुमको लेने नहीं आऊंगा, मगर वो बच्चा कहता है एक दिन तुम्हारा पोस्ट भी जाएगा, फिर क्या होगा, मेरा दूसरा यमराज आ जाएगा, फिर तो हमको ले जाएगा। और उसको बहुत से बात यंत्र अप्सरा ये आदि सब कुछ कहा, ये सब ले जा तुम। तो उसने कहा सर्वे इंद्रियांति जरयन्ति तेजः, बोले इनके भोग से हमारी इंद्रियों का तेज चला जाता है, हमको ये नहीं चाहिए। तो विषय के भोग से हमारी इंद्रियों का तेज जाता है। देखो नेचर देखो इसका, विषयों का क्या क्या होता है। भगवान कहते हैं आद्यंतमंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, ये सुख कैसे हैं, विषय सुख का स्वभाव कैसा है, आदि है और अंत है। जब विषय के संपर्क में आते हैं तो उसका सुख जनित सुख होता है, और जैसे ही सुख खत्म हुआ, जब ने उसको छोड़ दिया, खत्म, आद्यंत, उनका वियोग जो है अंत है। और बीच में क्या होता है? बोले बीच में सुख की केवल प्रतीति है, पहले भी सुख नहीं था, बाद में भी सुख नहीं है, मगर बीच में तो हमको लगता है, मगर महात्मा लोग कहते हैं बीच में जो सुख है वो केवल प्रतीति है, एपियरेंस केवल मात्र है, प्रतीति है। अच्छा, और वो क्षणिक है, अनित्य है। अच्छा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार के सुख में सुख की गंध मात्र नहीं है, गंध मात्र नहीं है। और हमको कैसा लगता है, सारा सुख जो है विषयों के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसके अंदर गंध मात्र भी नहीं है। एव शब्द जो यहां पर लिया गया है श्लोक के अंदर, उससे ये बताया जाता है कि भोग के समय भी जो है ये दुख की योनि है। देखो जरा अच्छी तरह समझो इसको, भोग के समय भी ये दुख की योनि है। कैसे प्रूव करोगे? भोग के समय राग और द्वेष बनते जाएंगे। ये राग और द्वेष क्या है? वासना है। ये वासना क्या करेंगी? दूसरा जन्म देगी। तो भोग के समय भी आपको आपको लगता है सुख है, आप उस सुख को बार बार चाहते हो, राग हो गया। आप ये सुख नहीं चाहते हो, इस दुकान का पिज्जा हमको नहीं खाना है, उस दुकान से हमारा द्वेष है, हमको उस दुकान का पिज्जा खाना है, हम वहां बार बार जाते हैं, ये राग है। वासना बन गई ना, ये वासना क्या होगी आपको मृत्यु के बाद में? फिर आपको जन्म आपको देगी वासना। अब बताओ ये दुख योनि है कि सुख है? भोग के काल में भी ये दुख देता है, क्योंकि राग द्वेष बनते हैं। तो मृत्यु के पश्चात भी ये आपको दुख देंगे, यहां भी दुख दे रहे हैं, वासना बन रही है, और यहां से जाने के बाद भी ये दुखी देंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली जो भी विषय हमारे पास में है, जब वो नष्ट होंगे तब दुखी देंगे। अब आपका ये मान लो ये मकान है, कल को अगर ये टूट गया तो आपको सुख देगा क्या? एक थोड़ा सा एक इंची का छेदा हो जाता है छत में तो दुख देना शुरू करता है। अगर ये गिर गया या टूट गया या कुछ नुकसान हो गया तो ये दुख देगा। अच्छा, एक और चीज होती है, संसारी सुख चले जाने का भय लगा रहता है बराबर। जो भी सुख है हमारे पास में कहीं खत्म ना हो जाए, ये हरदम हम डरते रहते हैं, हरदम भय 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 लगा रहता है। और अगर दूसरों के पास सुख ज्यादा है, हमको इच्छा होती है उसके प्रति। मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास दो गाड़ी है, इच्छा हो गई। और अगर मेरे पास चार गाड़ी है, उसके पास दो गाड़ी है, उसको मेरे प्रति ईर्ष्या हो जाती है। देखो संसार के विषय ऐसे हैं। बुद्ध न तेसु रमते, परमार्थ तत्व जाने वाला विवेकी आदमी उनमें रमन नहीं करता, उनमें नहीं रमता। उसको मालूम है इसका नेचर ऐसा है, इसलिए जब वो उसके उसको जब वो विषय मिलते हैं ज्ञानी को तो हर्षित नहीं होता है, जब नहीं मिलते हैं तो उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि उनके विषयों के सुख के बारे में उसको पूरा ज्ञान है। विषय काल में भी ये दुख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे कैसे दुख देते हैं, आपको बताना होगा। अच्छा, वैराग्य ही ज्ञान का कारण है। वैराग्य जो है वो ज्ञान का कारण है, और वैराग्य ही ज्ञान का फल है। वैराग्य ही ज्ञान का कारण है, वैराग्य होगा तो ज्ञान होगा, और एक बार ज्ञान हो गया तो फिर तो संसार से वैराग्य ऑटोमेटिक होगा। जीवित काल में भी आप वैरागी रहोगे, क्योंकि हमको उसके अनात्म वस्तुओं का नेचर के बारे में पता है। हमको अनात्म वस्तु हमें सुख नहीं देती है, ये हमें पता है। अच्छा, मगर हमारे कल्याण के मार्ग पर काम क्रोध आदि दोष बड़ा दुखदायक हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो लगा रहता है हम लोग में। सब अनर्थों की प्राप्ति का कारण एवं काम क्रोध आदि यही है, जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसका रिंग लीडर कौन है? काम। कैसे रिंग लीडर काम है, कैसे प्रूफ करेंगे आप? लोभ आ गया, ऑब्स्ट्रक्टेड क्रोध आ गया, आपके पास ज्यादा हो गया मद हो गया आपको, है? दूसरे के पास ज्यादा है मास्टर हो गया। आपके पास धन ज्यादा है, आप मोहित हो गए, आप किसी को ख्याल ही नहीं करते कौन आदमी है ये, मोह हो जाता है। काम जो है वो लीडर है, एक काम को अगर आप अगर ठीक कर लो बाकी सब ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें प्रयत्न करना होगा। तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में,
शक्नोति हैव यस्सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षनात्
कामक्रोधोद्भवं वेगम्
सयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यस्सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षनात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः।
शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षनाश, शरीर विमोक्षनाश मतलब शरीर के नाश के पहले, शरीर छूटने के पहले, प्राक प्राक मतलब पहले, शरीर छूटने के पहले सोढ़ुम सहन करने में शक्नोति, अगर आप समर्थ हैं, शरीर छूटने के पहले काम क्रोध आदि में, काम क्रोध उद्भवम वेगम, जब काम क्रोध आता है तो उसमें एक वेग आता है, उस वेग को अगर आप सहन करने में, उसको कंट्रोल करने में अगर आप समर्थ हैं, तो भगवान कहते हैं सयुक्त, तो वो युक्त आदमी है, स सुखी नर है, वो व्यक्ति सुखी है। तो काम क्रोध जब मन में उत्पन्न होता है तो एक वेग आता है, एक टेरिबल फोर्स है उसका, उस फोर्स को अगर शरीर छोड़ने के पहले या इसको सहन करने में कोई अगर समर्थ है तो वो नर, वो व्यक्ति जो है वो युक्त है, वो सुखी है, ये भगवान कहते हैं। अच्छा, जीवित पुरुष में, जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य होता है, शंकराचार्य जी कहते हैं हर जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? जिसने भी जन्म लिया उसकी जो है वासना की कैपिटल पीछे से चली आ रही है, वासना के अनुसार हमारी बुद्धि के अंदर कामना आती है। वासना मतलब आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से कामना आएगी। तो जैसी वासना वैसी कामना, और जैसी कामना वैसा आपका कार्य होगा, एक्शन होगा, वैसा ही कर्म होगा आपका। तो अगर आप जीवित पुरुष हो तो आपके अंतःकरण में कामना अवश्य आएगी, शंकराचार्य जी कहते हैं। क्यों आएगी? क्योंकि जब तक आप ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो तो अज्ञानी कैसे चलता है? अपनी वासना के अनुसार चलता है। वासना का मतलब राग द्वेष, और राग द्वेष के हिसाब से आपके अंदर कामना आएगी, कामना के हिसाब से आपका कर्म होगा। ये साइंस है। अच्छा, और यह मृत्यु पर्यंत तक कई रूप में आ सकता है, मृत्यु पर्यंत कई रूप में आ सकता है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कभी कि अरे हमने अपनी कामना को कंट्रोल कर लिया, नहीं, मृत्यु पर्यंत तक आ सकता है। काम क्रोध को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, आगे ही हमने तीसरे अध्याय में देखा है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष है। मेरे को लग मालूम है भगवान की ये पाप कर्म है, मगर फिर भी मैं करता हूं, क्यों करता हूं? कई बार होता है ना, हमको मालूम है गलत काम है, झूठ बोलना गलत है, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, भगवान ने उत्तर दिया था, काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समद्वय, ये तुम्हारी कामना है। आपके मन के अंदर जो है 51% जो कहता है नहीं नहीं कर लो झूठ बोल दो, 49% कहता है मत बोलो ये गलत काम है, तो किसने ओवर पावर किया? मन के अंदर दो नहीं है, ओवर पावर किसने किया? कामना ने, बोल दो ये तुमको लेना है, कामना है। अच्छा, काम किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी ने उसकी परिभाषा दी है, काम किसको कहते हैं? किसी अनुभव किए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर होने पर, किसी अनुभव किए सुखदायक इष्ट विषय के दर्शन होने पर, इंद्रिय गोचर होने पर, सुनने पर, स्मरण होने जाने पर, उसे पाने की लालसा तृष्णा काम है। काम बराबर निर्भर करता है आपका पिछला अनुभव, याद रखो, किसी अनुभव किए सुखदायक इष्ट, आपको सुख मिला किसी अनुभव में। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक पर्टिकुलर दुकान का पिज्जा ले लो, उसको खा के आपको सुख मिला, अनुभव हो गया। अब उसके बाद में क्या, फिर इंद्रिय गोचर, आप जा रहे हो इंद्रिय गोचर, अरे उस दुकान, इंद्रिय गोचर देख लिया आपने, या सुनने पर किसी ने बात कही, अरे वो दुकान आज खुली हुई है आप गए थे क्या? सुना, आप देख नहीं रहे हो सुन रहे हो। तीसरा, स्मरण करने पर, पास्ट एक्सपीरियंस यू आर रिमेंबरिंग। फिर क्या होता है, उसके पाने की लालसा तृष्णा काम है, इसको काम कहा। क्रोध क्या है? वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों को देखने से, दुखदायक विषय मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आपको दिखाई पड़ गई, या कोई कह रहा है उसके बारे में, या उसका स्मरण हो गया, तब उसका जो द्वेष जो होता है वो क्रोध है। तो ये एक काम और क्रोध का उन्होंने बताया। तो महात्माओं ने काम को असुर कहा है एवं क्रोध को राक्षस कहा है। महात्माओं ने काम को कहा है कि ये असुर है और क्रोध को राक्षस कहा है। अच्छा, काम क्रोध की विशेषता क्या है? इसमें बड़ा वेग है, बहुत फोर्स है, और हठात प्रकट होते हैं, कोई समय नहीं देते हैं, कोई समय नहीं देते हैं, सोचने का टाइम नहीं देते हैं। अच्छा, क्या हम काम क्रोध को ज्ञान चक्षु से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि भगवान ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को जो है जला दिया था? क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या शरीर छोड़ने के पहले हमें इन्हें नियंत्रण कर सकते हैं क्या हम? तो इसका उत्तर यह है, काम क्रोध जो है अज्ञानी और साधक के पास आते हैं, अज्ञानी, ज्ञानी, और एक बीच में साधक होता है जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जा रहा है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो साधक है। काम क्रोध किसके पास आते हैं? अज्ञानी के पास आते हैं, साधक के पास आते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान पूरा भी नहीं हुआ है, उसने यात्रा शुरू की है, इन दोनों के पास में आते हैं। ज्ञानी को ये नहीं पकड़ सकते, ज्ञानी को नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि काम क्रोध निर्भर करते हैं वासना पर। अभी हमने आपको बताया काम कैसे आता है, वासना के अनुसार। वासना का मतलब क्या है? हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसी हमारी लाइक्स डिसलाइक्स होगी, डिसलाइक होगी, उसके हिसाब से हमारे में कामना आएगी बुद्धि स्तर पर, और उसके बाद शरीर के लेवल पर वो कर्म हो जाता है। अज्ञानी की वासना अभी खत्म नहीं हुई, ज्ञानी की वासना खत्म हो जाती है ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, वो BMI चार्ट के अंदर भी फिर नहीं रहता, वासना नहीं रहती, अज्ञान रहता। वो जो वासना के पर्यावर्ती शब्द क्या क्या हैं? वासना, अज्ञान, त्रिगुण, योग माया, टेंडेंसीज, इम्प्रेशंस, यही हम कहते हैं ना, यूज करते हैं। तो ज्ञानी का तो अज्ञान खत्म हो गया, तो वासना नहीं है। अगर वासना नहीं है तो फिर कामना आएगी, साइंटिफिक एकदम। वासना अगर है तो कामना आएगी, कामना है तो कर्म होगा, अगर वासना नहीं है तो कामना नहीं है, कामना नहीं है तो कर्म है। ये साइंस है। तो ज्ञानी जो है समाज की भलाई के लिए क्रोध दिखा सकता है। हमारे गुरुजी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, मगर दो चार क्षण के लिए, उसके बाद में फिर जाओ मिलो, भूल गए सब कुछ, फिर आपको हंस के मिलेंगे, थोड़े देर के लिए क्रोध करेंगे। अच्छा अच्छा, ज्ञानी के पास काम क्रोध प्रारब्ध के कारण भी आ सकता है, मगर ज्ञानी उनको जोर नहीं देता, कोई गौर नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि वह युक्त है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ में युक्त है। इसलिए सयुक्त ससुखी न रहे, ऐसे काम क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, वह मनुष्य संसार में योगी है एवं सुखी है। तो काम क्रोध के ऊपर हमको प्रयत्न करना होगा, उसको कंट्रोल का प्रयत्न करना होगा। और वे कैसे हैं काम क्रोध, मृत्यु पर्यंत तक आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। प्राक शरीर विमोचन, मतलब शरीर छोड़ने के पहले तक जो है काम क्रोध आ सकता है। अच्छा, अब जीवन मुक्त के लक्षण देखिए।
सुखंतरारामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
देखो, सांख्य योग की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण जो है बता रहे हैं आप, जो अंतिम स्टेज में पहुंच चुके हैं उसके लक्षण हैं। ब्रह्म में स्थित कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है उसके लक्षण बताते हैं। यह अंतर सुख अंतर आराम तथा अंतर ज्योति एव, अंतर सुख है मतलब स्वात्मनी सुख न विशेष, अंतर सुख है जो ज्ञानी है वो कौन से सुख में रमन कर रहा है, अंतर सुख है, नॉट बाह्य सुख है। इसलिए स्वात्मनि सुख न विषयेषु, वो विषय के सुख के अंदर रमन नहीं करता है। अंतर सुख है जिसका सुख भीतर है, विषयों में सुख के लिए नहीं रमता। और असली सुख है कहाँ, भीतर है, बाहर तो है ही नहीं, असली सुख भीतर है। अंतराराम क्रीड़ा न बहियस्य, क्रीड़ा न बहियस्य, बाहर वो खेलता नहीं है, बाहर विषयों के साथ नहीं खेलता है। अच्छा, बाहर विषयों के साथ नहीं खेलता, अब ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई अब वो ज्ञानी हो गया तो खाना नहीं खाएगा, ज्ञान होने के बाद भी शरीर रहेगा, शरीर अगर रहेगा तो उसको जो है भूख प्यास लगेगी, वो भी टायर्ड होगा, वो भी सोएगा। तो कई लोगों की ऐसी परिभाषा होता है, यार ये तो ज्ञानी है, खाएगा कैसे, खाता क्यों है, ये सोता क्यों है, 24 घंटे जगा रहेगा, ऐसा लोगों की परिभाषा होती है ज्ञानी के बारे में। अंतर ज्योति, अंतर प्रकाश है उसका, उसका विजन भीतर है, अंतकरण पूरा प्रकाशित है, पूरा प्रकाशित है। हमारा अभी अंतकरण क्या है, अंधेरा है, कुछ नहीं समझ में आता है, अंधेरा एकदम है। हमारी नजर कहां रहती है? बाहर है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, यस्त आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च पाणव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मरति में लगा हुआ है, आत्म में, और आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कोई कार्य नहीं है, कोई कर्म नहीं करना है, कोई कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, इसीलिए हमारे शास्त्र में भी कहा है कि जो ज्ञानी है उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। आप किसी ज्ञानी को नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं पूजा करते हो, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, ऐसा नहीं कह सकते आप उसको, क्यों नहीं कह सकते? हाँ? नहीं, आपको साइंस बताना होगा ना, क्यों नहीं कह सकते? नहीं, उसका मन शुद्ध हो गया, पहले शुद्ध करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है, तीर्थ भ्रमण, पूजा, जप, ये सब जो है मन शुद्धि के हैं। मन शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान हो जाने के बाद में फिर क्या मन शुद्ध करना है? आपका कपड़ा जब मैला होता है तब उसको वॉशिंग मशीन में देते हो या ब्लीचिंग लगा देते हो गया साफ हो गया, फिर क्या दोबारा देते हो उसको? नहीं देते हो। एक बार मन शुद्ध हो गया, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर हमें ये प्रक्रिया करने की दरकार नहीं है। हमारी इच्छा होगी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मगर अज्ञानी क्या कहता है, अरे हम तो हर बार इतने व्रत करते हैं, तप करते हैं, ये तो कुछ नहीं करता, ये कैसा ज्ञानी है? लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, आप अपने हिसाब से बुद्धि के हिसाब से सब सोचते हैं कि भाई ये हमारे हिसाब से ज्ञानी ऐसा होता है। आत्मरति, आत्म क्रीड़ा और क्रियावान मुंडक उपनिषद में आता है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो ऐसा योगी है वह यहां जीवित अवस्था में ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण माने लय, ब्रह्म में लीन हो जाता है। जीवित काल में एज ए ब्रह्म वो इस संसार में घूमता है, जीवित काल में। अच्छा, तो इस श्लोक में जो साधना भगवान ने बताई है वो साधना वो करता है, जो योगी है, जो आत्मज्ञानी है, वो अंत सुख, अंतरामा, अंत तृप्त, ये सब है वो। मगर उसको ये मिला कैसे, उसने क्या साधना की जो उसको ये सब मिला? तो ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं आगे, तद्बुद्ध है, तदात्मना, तदनिष्ठा, तत्परायणा, हमने शुरू ही किया था आज यहां से। उसने क्या किया? तत्परायणा का मतलब क्या है? थोड़ी सी बुद्धि देखें आपकी, थोड़ी कितनी प्रखर है। तत्परायणा का मतलब क्या बताया हमने? तत्परायणा का मतलब है कि उसका गोल आत्मा है, उसका लक्ष्य आत्मा है। तत्परायणा, तदनिष्ठा, तदनिष्ठा का क्या बताया हमने? श्रवण मनन में निष्ठा है। उसके बाद में तदात्मना, सिंपल है, उधर श्रवण मनन हो गया, निष्ठा किसमें होना चाहिए? अब निधि ध्यासन आना चाहिए, श्रवण मनन निधि ध्यासन, निधि ध्यासन या मैंने सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि की। तद्बुद्ध, अब अपरोक्ष अनुभूति होगी, अपरोक्ष। तो ये साधना उसने की है, तब आपको मिलेगा। पहले गोल निश्चित करना है, क्या गोल है हमारा? हमको आत्मा चाहिए। क्यों आत्मा चाहिए? क्योंकि उसके पास में अक्षय सुख है, हमको अक्षय सुख चाहिए। ये कब आएगा? जब हम विवेक करेंगे। क्या विवेक करेंगे? आत्मा अनात्मा का। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को परमानेंट सुख चाहिए। अनात्मा में क्या परमानेंट सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमानेंट सुख अवेलेबल है, कहाँ है? आत्मा में। बाहर है कि भीतर है? भीतर है। कैसे मिलेगा? तत्परायण, तदनिष्ठा, तदात्मन, तद्बुद्ध है। वाह, ओके। जब हो जाएगा फिर क्या होगा? न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य न उद्वेजेत प्राप्य च अप्रियं। अब उसके बाद में फिर आपको प्रिय और अप्रिय मिले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हर्षित नहीं होंगे या दुखी भी नहीं होंगे। अब हमारे पास में 25, 26, 27, 28, 29, जिसमें 25 और 26 जो है पांचवें अध्याय के बारे में है, 27, 28, 29 छठे अध्याय का जो है थोड़ा सा आपको ग्लिम्स बताएंगे कि ध्यान योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो इसको हम अगले क्लास में देख के अगली अच्छा में खत्म करेंगे। चूंकि हम लोग जा रहे हैं इंडिया ऑन 25 नवंबर, हम चाहेंगे कि अगले बृहस्पतिवार को एक बार क्लास करके इनको खत्म कर दें, ताकि फिर जब हम वापस आएंगे जनवरी में फिर छठा अध्याय शुरू करेंगे। तो आपके पास में अगले बृहस्पतिवार आने के लिए समय है, अगर आप सब राजी हो तो करेंगे, नहीं होगा तो अगर आप चाहेंगे तो फिर जनवरी में करेंगे, अगले साल करेंगे। करेंगे, चलो ठीक है फिर करेंगे,
अगले हफ्ते और अगले साल कौन सा करता
है। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।